दी प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूं निखिल रामपाल की रिपोर्ट। मुफ्त अनाज स्कीम से कैसे गुजरात हिमाचल प्रदेश के चुनाव में फायदा उठा सकती है भाजपा। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY से चुनावी राज्य गुजरात में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है। इस योजना को पिछले सप्ताह अगले 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के 2 सेट्स का विश्लेषण 2020 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और PMGKAY लाभार्थियों की सरकार की अपनी सूची से पता चलता है कि गुजरात के 53.5% आबादी और हिमाचल की 38.4% आबादी को इस योजना से फायदा पहुंचेगा। ये आंकड़े काफ़ी मायने रखते हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। पार्टी ने हाल के 5 विधानसभा चुनाव में से 4 में जीत हासिल की है। इन 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में से 3 में आबादी का बड़ा हिस्सा PMGKAY योजना के लिए पात्र है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकारी लाभ कार्यक्रमों और मतदाता व्यवहार के बीच एक कड़ी देखी गई है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडींग डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने दी प्रिंट को बताया, विकास कार्यों पर खर्च किए गए किसी भी पैसे के अपने राजनीतिक फायदे होते हैं, बशर्ते कि अंतिम लाभार्थी तक पहुंचे। वह आगे कहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन यही बताता है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और जिन्हें लगातार लाभ दिया जा रहा है, वह एक राजनीतिक दल के प्रति वफादार बनने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। यह योजना अप्रैल से जून 2020 तक कोविड की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम में उन लोगों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज दिया जाता है जो पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के तहत सब्सिडी वाले राशन 2 रुपये प्रति किलो चावल और 3 रुपये प्रति किलो गेहूँ पाने के पात्र हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 80 करोड़ भारतीय NFSA के तहत रियायती राशन प्राप्त करने के पात्र हैं। PMGKAY को अब तक 6 बार बढ़ाया जा चुका है। यह स्कीम 30 सितंबर को ख़त्म हो रही थी, इसे 28 सितंबर को फिर से बढ़ा दिया गया। अभी यह 7वें चरण में है। गुजरात की आधी से ज़्यादा आबादी को इस योजना से फ़ायदा मिल सकता है। यह आंकड़े उस समय सामने आए जब चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों की ओर से लोगों को मुफ्त में रेवड़ी बांटने की संस्कृति पर तीखी बहस चल रही है। इसने इस बात पर भी बहस बढ़ा दी है कि क्या सरकार की तरफ से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाएं भी एक रेवड़ी हो सकती हैं। पिछले हफ्ते जारी एक सरकारी सूचना में कहा गया है कि इस योजना का विस्तार किया जा रहा है ताकि आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे नवरात्रि, दशहरा, मिलाद उन नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक देव जयंती, क्रिसमस आदि के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहारा दिया जा सके। स्कीम के विस्तार से वो त्योहारों को हंसी खुशी मना सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अनुमानित 61.9% आबादी मुफ्त अनाज योजना से लाभान्वित होती है। राज्य में चुनावी जीत के बाद मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार को दूसरा कार्यकाल मिला है। मणिपुर और उत्तराखंड में भी जहां इस साल चुनाव हुए हैं, यह अनुपात क्रमशः 64.6% और 55.1% है। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने 3 राज्यों में आराम से जीत हासिल की है। दूसरी ओर पंजाब 46.9% और गोवा 33.5% में PMGKAY योजना से फ़ायदा पाने वाले लोगों का अनुपात कम है। हालांकि बीजेपी ने गोवा में जीत हासिल की, लेकिन वह पंजाब में सिर्फ 2 सीटों पर ही कामयाब रहे। लेकिन ये राजनीतिक लाभ एक बड़े कीमत पर आते हैं। लेखा महानियंत्रक के डेटा से पता चलता है कि भारत का खाद्य सब्सिडी बिल, जो एक महामारी से पहले के 5 वर्षों में औसतन 1 लाख करोड़ रुपये हुआ करता था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपये हो गया है। योजना का विस्तार ऐसे समय में हुआ है जब सरकार का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से अच्छी तरह से उबर रही है। यहाँ एक और बात अहम है, सरकार के भीतर PMGKAY विस्तार को लेकर आपत्तियाँ थीं। व्यय विभाग की ओर से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजे गए एक कार्यालय ज्ञापन से इसे जाना जा सकता है। व्यय विभाग के एक उप निदेशक रवि रंजन के हस्ताक्षर वाले पत्र में लिखा था, महामारी काफ़ी हद तक खत्म हो गई है और जिस संकट के लिए यह राहत दी गई थी वह प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा लंबे समय तक इसे जारी रखना इसके स्थायी होने या अनिश्चितकाल तक निरंतर बने रहने का आभास दे सकता है और फिर इसे बंद करना मुश्किल हो जाएगा। इन आपत्तियों के बावजूद योजना के विस्तार ने यह सवाल उठाया है कि क्या वित्त पर बढ़ते भार पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। इस विचार के बावजूद किस तरह की स्कीम से राजनीतिक लाभ मिलता है, CSDS के संजय कुमार का मानना है कि PMJKAY के तहत फ्री भोजन योजना के तहत दिया गया विस्तार सिर्फ राजनीतिक नहीं है। उनका मानना है कि यह गुजरात जैसे राज्य के लिए विशेष रूप से सच है। कुमार ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह कदम सिर्फ राजनीतिक हितों के लिए उठाया गया है, यह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन गरीब परिवारों की मदद कर पाएगा जो महामारी के दौरान कर्ज तले दब गए थे। कुमार CSDS लोकनीत के सहनिदेशक भी हैं। यह एक शोध कार्यक्रम है जो लोकतांत्रिक राजनीति पर केंद्रित है। उन्होंने आगे बताया, खास तौर पर गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में आपको चुनाव जीतने के लिए इससे ज़्यादा की जरूरत होगी। सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर एक्शन एंड रिसर्च की प्रमुख और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी रक्षिता स्वामी के अनुसार PMJKAY योजना का विस्तार करने का जाल सरकार का खुद का बनाया हुआ है। उन्होंने दीप्रिंट को बताया, यह लोगों का अधिकार है जिसे वह सहायता बताते हैं। वह आगे कहते हैं, राजनीतिक वर्ग इसका इस तरह से प्रचार करता है ताकि यह धारणा बन सके कि यह खास तौर पर गरीबों के लिए किया जा रहा है, जबकि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनका कानूनी अधिकार है। उन्होंने समझाया कि समस्या यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 की केंद्र प्रायोजित योजना, जिस पर PMJKAY के लाभ पाने वाले लोग निर्भर हैं, अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। नतीजा 2013 की योजना में वे लोग शामिल नहीं हैं जो हाल ही में गरीबी में शामिल हुए हैं और जो सरकार के तय पैमानों के तहत खुद ब खुद समावेश के लिए पात्र होंगे। उन्होंने दीप्रिंट को बताया, अगर सरकार ने समय पर जनगणना की होती और NFSA के तहत लाभार्थियों की संख्या की गणना के लिए नए जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया होता तो उसे PMJKAY योजना का विस्तार नहीं करना पड़ता। इस तरह के पुराने डेटा का इस्तेमाल करने से पैदा हुई गड़बड़ में से यह है कि गुजरात अभी भी अपनी आबादी के इतने बड़े हिस्से 53.5% के लिए खाद्य सब्सिडी पर निर्भर है, जो कि भारत का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। सुप्रभात के इस अंक को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।